में भी कहा जाता है देव देव फिर देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, तो कहते हैं शिव परमात्मा है। तो इससे स्थापित हो जाता है कि परमात्मा का जो असली रूप है वो इन तीन मूर्तियों में ब्रह्मा के द्वारा भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा अगर वो परमात्मा का रूप संसार में प्रत्यक्ष हुआ होता और सारी दुनिया उसके सामने झुकी होती तो उसके भी मंदिर होते, उसकी भी मंदिरों में पूजा हुई होती और उसकी भी मूर्तियाँ होनी चाहिए। लेकिन न मंदिर मिलते हैं, न मूर्तियाँ हैं और न पूजा की शास्त्रों में दिखाई गई। रही विष्णु की बात, वो तो हमें बताया गया विष्णु कोई अलग से चार भुजाओं का व्यक्तित्व नहीं होता, ये तो चार आत्माओं के भाव स्वभाव संसार का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सी चार आत्माएं? ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती, ये चार आत्माओं का जो कॉम्बिनेशन है वही विष्णु के रूप में चार भुजाओं के रूप में दिखा दिया है। विस्तार में परिचय तो अभी देंगे। जो ये भी शत्रु पक्ष का देवता है, ये कोई संगम रूप में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला व्यक्तित्व नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो विष्णु जब एक सेकंड में ब्रह्मा तो विष्णु बनेगा उस समय वो देवता का रूप होगा। देवता शत्रु में होते हैं और संगम में मनुष्य होते, लेकिन परमात्मा का रूप सिद्ध है तो परमात्मा है गुप्त। तो इन तीन मूर्तियों में जो महादेव की मूर्ति है वही परमात्मा का बड़ा बच्चा है। और हमारी भारतीय परंपरा हमेशा जितने भी राजाए हुए उनमें ये परंपरा रही है कि बड़े बच्चे को ही हमेशा राजाई दी जाती है, क्योंकि जो बड़ा बच्चा होता है वो और बच्चों के मुकाबले ज्यादा प्योरिटी की पावर से जन्म लेता है, लंबे समय की ब्रह्मचर्य की पावर, और उस पावर से पहले बच्चे का जन्म होता है, उसमें शक्ति ज्यादा होती है, प्योरिटी की पावर ज्यादा होती है, इसलिए उस बड़े बच्चे को ही राजाई देने का विधान आरंभ से ही चला है। इसका फाउंडेशन कहाँ से पड़ता? फाउंडेशन इसका भी शिव बाबा आदर भी जानते हैं, इसलिए मुझे ने बोला है गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा देवताओं में बड़ा संसद, ये महावाक्य है मुरली का। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर हुआ तीन देवताओं में बड़ा देवता, महादेव। और वही देवता जो है वो संगम में, संगम की ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में संसार में विश्व का पिता कहो, विश्व पति कहो या विश्वनाथ कहो, इस रूप में प्रत्यक्ष होता है। जैसे गायन है हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ ज्योति, परमात्मा ज्योति बिंदु हम बच्चों के सामने दो रूपों में प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे दुनिया में बाप पहले बच्चों के सामने मुक्त होता है, बच्चों को पता नहीं है कि बाप ने पैदाइश में पहले हिस्सा लिया बीजारोपण करने के लिए, बच्चों को किसका परिचय पहले होता है? माँ का परिचय। ऐसे ही हम ब्राह्मण बच्चों को पहले परिचय किसका हुआ? ब्रह्मा का, माँ का परिचय हुआ। जब तक अबोध बच्चे हैं वो माँ को ही माई बात समझते हैं, जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो माँ ही उन बच्चों को इशारा देती है ये तुम्हारा बाप है, पापा है, तब बाद में बाप प्रत्यक्ष होता है। ऐसे ही हमारे यज्ञ में भी हुआ कि जब 18 वर्ष की 18 अध्याय गीता यानी 51 से लेकर 68 तक गीता माता संपन्न रूप में हमारे सामने, हम बच्चों के सामने आ गई, गीता माता का na ka, mari kan mo gabi. Tukputi sa na lahat. Siyo, bako na yun. Rese, utubutin kiya. Ibasya, drama ko mari ito rin ni Sujele, iyan at larang na. Ito na, pagyabi ka sa sasunod. Tumapanan ko, drama ko mari kumari gende, utubutin sila umuti dati. Tumapanan ko, kiyari ko, pagyabi ka sa drama ko mari kumari. Ito ba, kiyar ako ito. Ibaba na ko, ibasya, siya yung kikiyari. Yo, drama kiyari, magpastasin. Mungkin kami kacau kerana balik. Mungkin kami rasai tak sih. Jadi mungkin kita drama sabat pun. Sesuruh kuih hoga tak tu pun. Drama tak pun. Drama jasa tak sebari ma. Rasa ni rala di. Sesuruh kuih he. Bukan sih tu. Yuk ha. Hari ni. बीज में कुछ हो गया और अंत में वही बीजारोपण ज्ञान का बीज बोने वाला अब उस जरूरी पेट में जिसने ब्रह्मा के बीज बोया वो अंत में वही बाप बच्चों को वर्षा देने के लिए फिर सेट हो जाएगा जो कच्चा जीव को होता है उसी को दुनिया वालों ने सिर कर करके रूप में नाम की बच्ची दुनिया वाले ये नहीं जानते कि शिव और शंकर ये दो अलग आत्मा है लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे इस व्यक्ति को जानते हैं कि शिव है निराकार ज्योतिबिंदु बाप का नाम उसका एक ही नाम है जो कभी बदलता नहीं जब रूप बदलते हैं तो उनके नाम भी बदल जाते हैं ब्रह्मा के तन में दादा लेकर आपके तन में प्रवेश किया तो नाम पड़ा ब्रह्मा और जब वही सोल सुप्रीम सोल किसी दूसरे ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है जिसे मुकर्रर रथ कहा जाता है बाप का बाप के दो रथ हुए एक टेम्परेरी रथ जो आज में भी नहीं था अंत में भी नहीं रहा और एक मुकर्रर रथ जो आज में भी था तो अंत में भी रहेगा तो मुकर्रर रथ के द्वारा बाप अंत में प्रत्यक्ष हो जाता है वही स्वरूप के द्वारा हम बच्चों को सन्मुख सामने आकर बाप जो डायरेक्शन देते या जो बातचीत करते वही मुरली है और वही डायरेक्शन है और वही सीमन तीन मूर्तियां हैं तो तीनों एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं हो सकती उनमें भी जेठ से जेठ एक ही मूर्ति होगी और वही संसार में गायन और पूजन योगी मानी जाती है प्रमाण के लिए दुनिया में जितनी भी खुदाइयां हुई जमीन की उनमें सबसे ज्यादा मूर्तियां नग्न मूर्तियां निकली जिनको जैन में मित्र शंकर और हिंदू में उनको शंकर कहा जाता है लिंगाकार भी निकले जहां जहां वो नग्न मूर्तियां निकली है वहां लिंग भी निकले लेकिन वो लिंग जो है वो भी वास्तव में उस साकार चोले की यादगार है क्योंकि बाबा ने मुझे बोला है कि मंदिरों में जो शिवलिंग बनाते हैं उसमें बीच में एक बिंदु भी रखते हैं बिंदु किसकी यादगार और वो लिंग जो प्रकाश से भरा पूरा दिखाया जाता है वो किसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर था और बीच में सफेद हीरा जड़ा हुआ था तो लाइट का जो आकार बड़ा आकार लिंग रूप में दिखाया गया वो किसकी यादगार हुई साकार सोल की यादगार और उसमें बिंदु सुप्रीम सोल की यादगार निराकार और साकार दोनों का मेल जो है वो शिव बाबा कहा जाता है जगन्नाथ के मंदिर में या श्रीनाथ के मंदिरों में भी जो लिंगाकार लकड़ी रखी हुई है काली काली उसी में आंखें नाक मुंह वगैरह बना दिए
रोम रोम को जानने वाला उसके मुख से निकली हुई एक एक वाणी के रहे उपरान होने लगे कहां रमण करें या
चिंतन भ्रमण करने में आराम नहीं है, उसको मनन चिंतन मंथन ही अच्छा लगे। ईश्वरीय सेवा की बातों में बुद्धि बिजी रहे और परमात्मा की याद में और नई दुनिया के प्लानिंग करने में बुद्धि भ्रमण करती है, तो ये हुई बुद्धि की सदगति। अगर बुद्धि में दुनियावी संकल्प चल रहे, देह और देह के संबंधियों के संकल्प चल रहे, दुनियावी धंधा धोरी जो पेट के धंधा धोरी है उनके संकल्प चल रहे, तो ऐसी बुद्धि को सदगति वाली बुद्धि मन बुद्धि नहीं कहा जाए, वो आत्मा सदगति की ओर नहीं है। अब हरेक ब्रह्मा कुमार कुमारी इस रूप में अपने को चेक करें कि हमारी मन बुद्धि आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा इस समय सदगति की ओर है या दुर्गति की ओर है, कितने परसेंटेज। तो वो सदगति मिलती ही है, पहले तो एक को मिलेगी, अगर एक को ही न मिली तो दूसरों को कहां से मिल जाएगी। इसलिए भारतीय परंपरा ने एक कहानी बना दी है, क्या भागीरथ ने गंगा लाई, गंगा अवतरण की एक कथा है। क्या कथा है? भागीरथ ने तपस्या की, तपस्या करके गंगा ऊपर से नीचे आई, माने ज्ञान गंगा ऊपर से नीचे तो आई, लेकिन वो शंकर के मस्तिष्क में समा गई, संसार का कल्याण फिर भी नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ कि जो भी ज्ञान गंगा आई उससे दुनिया वालों को कोई लाभ उतना नहीं हुआ, बल्कि कोई एक ब्राह्मण बच्चा है जिसमें मन चिंतन मंथन की स्टेज में वो ज्ञान की गंगा 18 वर्ष की जो मुरलियों का जो सार है वो भ्रमण करने लगा। गंगा जहाँ की तहाँ मस्तिष्क में जटाओं में समा गई, कोई बालों में नहीं समाने की बात है, बुद्धि में समा गई। कब से? कब से? इसकी नहीं से जब से ज्ञान गंगा का पूरा आरोपण इस शक्ति रूपी मंच पर हो गया, लेकिन दुनिया का कल्याण नहीं हुआ। दुनिया का कल्याण करने के लिए भागीरथ को फिर से प्रयत्न करना पड़ता है। तो वही भाग्यशाली रथ है तो नंबर वाला दोनों, फिर प्रवेश करके ब्राह्मण बच्चे में फिर पुरुषार्थ करता है और 76 में एडवांस ज्ञान के रूप में, एडवांस अनालिस के रूप में वो ज्ञान गंगा जटाओं से बहकर के पृथ्वी पर ब्राह्मण बच्चों का कल्याण करना शुरू करते हैं। तो ये ज्ञान गंगा की बात जो रमण बुद्धि में करने की बात है, यही सदगति की शुरुआत। अगर मनन चिंतन मंथन बुद्धि में नहीं चलता तो समझ लो आत्मा अभी रोगी है, सदगति पाने वाली नहीं। तो ये सदगुरु करूं तो पाप के रूप में
बोलने व्यक्ति को श्रीमत का पॉइंट पक्का पकड़ा दीजिए कि श्रीमत है परमात्मा शिव की, ब्रह्मा के थ्रू वो है हमारी गीता माता, और वो गीता माता भी अगर बुल्याद आदि में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान की वाणी सुनाता है, वो भी हमारे लिए श्रेष्ठ मती है, क्योंकि माता पिता प्रवृत्ति मार्ग में दोनों ही मान्य है। जो मुरली है अर्थात ब्रह्मा के थ्रू जो परमात्मा शिव ने सुनाई वो हमारी पोएट्री है, तो गुल्लादारी के द्वारा हमारी प्रोज है, लेकिन दोनों प्रकार की वाणियों का क्लैरिफिकेशन टीचर के रूप में बाप आकर के किसी और ही ब्राह्मण बच्चे के द्वारा हमारे सामने कर दे। तो ब्रह्मा की वाणी अथवा परमात्मा शिव की वाणी दोनों ही हमारे लिए श्रीमत है, लेकिन उनको न समझने के कारण, समझना भी तो जरूरी है। सैकड़ों महावाक्य बाबा ने बोले, लेकिन जब हम उनको समझ ही नहीं रहे हैं, उनके रहस्य को नहीं जानते, तो न समझने के बराबर हो गए। ब्रह्मा स्वयं भी उन महावाक्यों के अर्थ को नहीं समझता, नहीं तो सैंतीस पृष्ठ के विलास के बारे में जो परमात्मा शिव ने महावाक्य उच्चारण किए, ब्रह्मा की बुद्धि में वो अच्छी तरह क्लियर हो जाने चाहिए, वो झूठे साबित नहीं होने चाहिए। लेकिन जिन अर्थों में उन महावाक्यों को लिया गया वो झूठे साबित हुए, जबकि ऐसा नहीं है। परमात्मा की वाणी अपनी जगह बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन अर्थ चलिए खड़िए बोलते हैं, परमात्मा नहीं बोलता। एक तरफ तो परमात्मा वाणी में बोलते जा रहे हैं कि बिना ज्वालार्थ ज्ञान यह विकुंठ से प्रज्वलित हुई, तो यह विकुंठ से बिना ज्वाला प्रज्वलित होगी तो 76 में बिना कहां से शुरू होगा? बाहर की दुनिया से या यह विकुंठ से? यह विकुंठ से शुरू होगा ना, तो यह विकुंठ से शुरू हुआ। तो महावाक्यों का सार में जो है वो परमात्मा स्वयं ही आकर के बताता है। तो ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा की जो वाणी है अथवा गुलजार दादी के द्वारा जो कुछ बोली गई वाणी ब्रह्मा की है वो हमारे लिए माननीय नहीं है, लेकिन माननीय होते हुए भी वो हमारी समझ से बाहर है। जब तक उसका क्लेरिफिकेशन परमात्मा स्वयं आकर न करे तब तक हमारे लिए वो श्रीमत नहीं, क्योंकि श्रीमत के लिए मुरलियों ने भी बोला है पाप सन्मुख आकर श्रीमत देते, तो सन्मुख हमारे लिए श्रीमत कहाँ हुई? सन्मुख माने मुख के सामने, तो मुख के सामने आकर के परमात्मा जो श्रीमत देता है वो टीचर के रूप में और सदगुरु के रूप में। इसलिए वाणी में बोला हुआ है कि तुम बच्चों को कदम कदम पर श्रीमत पर चलना। कदम कदम का मतलब क्या हुआ? यानी अपने जीवन में जो भी कार्य करने के लिए कदम उठाए उस हर कार्य करने से पहले क्या करें? परमात्मा बाप से श्रीमत ले। ये कब संभव हो सकता है? जब परमात्मा सन्मुख इस सृष्टि पर विराजमान होगा तभी तो लेंगे, नहीं तो कैसे लेंगे? तो पहली पहली बात किसी की बुद्धि में श्रीमत की बैठा कि श्रीमत किसके द्वारा और श्रीमत क्या की। दूसरी बात, ब्रह्मा बाप टीचर या सदगुरु नहीं, वो सिर्फ माँ का पार्ट है। बड़ी माँ के रूप में परमात्मा ने उसके द्वारा पार्ट बजाए। बाप टीचर सदगुरु का पार्ट परमात्मा सिंह किसी और ही ब्राह्मण बच्चे के द्वारा बाद में प्रत्यक्ष होकर के बजाते। उनका क्लेरिफिकेशन, बाप का काम क्या, टीचर का काम क्या और सदगुरु का काम क्या, काम के आधार पर वो नाम भी क्लियर हो जाए। तीसरी बात आती है कि ब्रह्मा माँ है तो माँ पहले या बाप पहले? बाप तो पहले हो, तो वो कब? लेकिन तो ऐसे कैसे चले आए कि ब्रह्मा को 1933 में 60 साल हुए और उन्हें परमात्मा जी ने प्रवेश कर लिया? लेकिन ये सुनी सुनाई बात है, परमात्मा की वाणी में ऐसा क्लियर कट बात कहीं भी नहीं कही गई है कि परमात्मा शिव ने 1937 में प्रवेश कर लिया ब्रह्मा के अंदर। लेकर मुरलियों में तो ये वाक्य आए हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, टीचर होकर के बैठते थे, दिल कराते थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश होकर के डायरेक्शन देते, उनके डायरेक्शन पर हम चलते थे, यानी मम्मा बाबा चलते। आज वो बच्चे यज्ञ में हैं। ऐसे दूसरे वाक्य में बोला है, 10 वर्ष से रहने वाला यानी कोई पुरुष था, ध्यान में जाती थी यानी कोई स्त्री भी थी, मम्मा बाबा को ड्रिल सिखाते थे, उनमें बाबा प्रवेश होकर के डायरेक्शन देते थे, उनमें माने कोई दो थे, उनमें बाबा प्रवेश होकर के डायरेक्शन देते थे, कितना मर्तबा था, वो भी गुम हो गए। कारण बताया क्यों गुम हो गए? क्योंकि उस समय इतना ज्ञान है, माँ और बाप में विशेष अंतर यही होता है, माता होती है बुद्धि वो भावनावादी और बाप होता है बुद्धिवादी। विशाल बुद्धि होती है पिता की, माताएं चार दीवारी के अंदर रहने वाली होती है। दिल तो होता है लेकिन दिमाग उतना विशाल नहीं हो पाता। तो यही बात यहाँ देव के माता पिता के ऊपर भी लागू होती है। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार तो हुए, स्थापना का साक्षात्कार हुआ, विनाश का साक्षात्कार हुआ, विधि चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, वैकुंठवासी कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, लेकिन उन साक्षात्कारों को वो समझ नहीं सके। मुरली में ये बात आई है कि बाबा मुझ गए, समझ में नहीं आता था, वहां रची गए तो वहां दीवानों पर बैठ चित्र बनाते रहते थे, फिर भी कुछ नहीं समझ में आता। अपने गुरु से चिन्ह हैदराबाद में बाबा ने पूछा, क्या ये साक्षात्कार आपने कराए? तो उसने अनुमति दे दी कभी। उस समय के बाबा की गुरुओं की श्रद्धा हट गई, गुरुओं से तो श्रद्धा हट गई लेकिन अपने अनुभवी जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव अनेक व्यक्तियों के साथ मनुष्य को होते हैं। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में किसी व्यक्ति को ऐसे देखा जो ज्यादा से ज्यादा सच्चा उनको साबित हुआ, जिनके ऊपर अपने जीवन में उन्होंने सबसे ज्यादा विश्वास किया, और वो व्यक्ति था उनका साझीदार भागीदार, जिसके ऊपर उन्होंने कर सकते की सारी हीरो की दुकान सौंपी हुई। पहले वो व्यक्ति बाबा के दुकान में साधारण सा नौकर था, इसलिए बोला 10 वर्ष से रहने वाला। बाबा के साथ कितने साल से रहता था? 10 वर्ष से रहने वाला। उसको वफादार, होशियार और ईमानदार समझ करके बाबा ने अपनी सारी दुकान उसको सौंप दी और कहा कि सारी मेहनत तुम्हारी और लागत हमारी। दुनिया में करते हैं खेती दे देते हैं किसी व्यक्ति को, खेती करने वाले को, और कहते हैं इसमें जो पैदा है जो तुम्हारी मेहनत का आधा हिस्सा और हमारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा। तो ऐसे ही दोनों एक दूसरे के भागीदार हो गए। वो भागीदार ब्रह्मा बाबा को याद आया तब जब मुझ गए, तो बाबा उसी के पास पहुंचे। कहां पहुंचे? कलकत्ता। इसलिए अभ्यवाणी में बोला हुआ है मुरलियों को वो छुपा सकते हैं, लेकिन अभ्यवाणी जो छपा दी गई है, जो पब्लिश हो चुकी है, सैकड़ों हाथों में पहुंच चुकी है, वो कहां ले गए? उस अभ्यवाणी में बाबा ने बोला हुआ है ये तरफ को कहां से ढूंढा? पूर्वी बंगाल। कई कहते हैं जिन हैदराबाद में साक्षात्कार हुए वहां परमात्मा ने प्रवेश किया, कि वो हम से वो हम। ये जो सच्ची जीवन कहानी की पुस्तक है उसमें क्या लिखा है कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए फिर हैदराबाद में वो अपनी कोठरी में गए सत्संग छोड़ करके, और वहां वो से वो हम से वो हम कहने लगे। वो भी है तो कहाँ प्रवेश कहाँ हुआ? तो दो आने कैसे एक तरह एक बात साबित हो जाएंगे? या तो रथ को हैदराबाद में ढूंढा या कलकत्ते में ढूंढा, एक बात को दो बातें कहने से ही साबित हो जाता है कि रंग बात बोल रहे हैं। बाबा ने मुरली में बोला है साक्षात्कार होना अलग बात है और प्रवेश करना अलग बात है। जैसे जिसने कह दिया वैसे हर बात को नहीं मान लेना चाहिए। ये तो देहधारियों ने कहा कि ब्रह्मा में संसार से प्रवेशता हो गई, मुरली में तो बाबा ने नहीं कहा, या मुरली से तो ये बात साबित नहीं होती। मुरली से तो ये बात साबित होती है कि पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। मुरली में ये वाक्य है, पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। क्या मुरली नहीं चलाते? कराची से मुरली चलाने निकलती आई। मुरली चलाना कहाँ से शुरू हुआ? कराची से मुरली निकलती चली आई। तो सिंध हैदराबाद में पहले सत्संग शुरू हुआ या कराची में? पहले तो सिंध हैदराबाद में सत्संग शुरू हुआ था ना, वहां साक्षात्कार हुए थे। कराची तो बाद में पहुंचे हैं, कराची में तो सत्संग जब इकट्ठा हुआ है, गुस्सा भी इकट्ठा हुआ है जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया 1947-48 और बंटवारा होने के बाद जो बंदिश में पड़ी हुई माताएं कन्याएं सिंह हैदराबाद में थी, जिनको सत्संग से रोक दिया गया था, उनको मौका मिल गया 10-10, 5-5, 8-8, 15-15 की टोली बना करके बाबा के पास भागने, तो वहां संगठन सारा इकट्ठा हो गया। कहां? कराची। तब जब सारा संगठन इकट्ठा हो गया, सब परमात्मा शिव ने उनमें प्रवेश करके मुरली चलाना शुरू की। इसलिए वाक्य में बोला हुआ है महावाक्य कि पता कैसे चलता है मैं पाप भगवान है, जब मुरली सुनाते, ज्ञान सुनाते, तो कराची से मुरली चली चल निकलती चली आई है ब्रह्मा की मुक्ति, उसी समय से उनमें प्रवेशता साबित होती है। इसका एक प्रूफ और, ब्रह्मा की आय 100 साल बताई गई, 60 वर्ष की एज में प्रवेश होना साबित होता है, बाबा ने बोला है मुरली, तो 48 में 60 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए ब्रह्मा बाबा को, 48 प्लस 40 ईयर्स कितना आता है 88, ये ब्रह्मा बाबा की आय 100 ईयर्स पूरी होती है। अगर 76 में कहें तो 76 में एज पूरी हो जानी चाहिए, 76 में अगर एज पूरी होती है तो सूक्ष्म शरीर का पार्ट बंद हो जाना चाहिए 76, लेकिन 76 में सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों को मिला के जो ब्रह्मा की आय 100 वर्ष आंकी गई है, वो पार्ट समाप्त नहीं हुआ। इसका एक कारण अभी दिया है कि 77-88 में इस वर्ष बाबा नहीं आए, अब ये पीरियड है कि एक तरफ ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो और दूसरी तरफ ज्ञान चंद्रमा अस्त हो। तो ब्रह्मा में प्रवेशता जो है वो साबित होती है 48, जैसे सारा संगठन कराची में इकट्ठा हो गया, उससे पहले परमात्मा का पाठ नहीं चला क्या? चला, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा नहीं, वो पाठ चला ब्रह्मा को भी जिसने ज्ञान का बीज डाला, वो व्यक्ति था उनका भागीदार, अलग को मिला अल्लाह बेबाप सही सारी भागीदार को दे दी। अलग कौन और बे कौन? ये भी कि आज में वही व्यक्तित्व जिसमें परमात्मा शिव ने प्रवेश करके ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन दिया, वो हुआ अलग, और ब्रह्मा बाबा जिसने सारे संगठन का कंट्रोलिंग पावर संभाली, वो हुआ उस सारे संगठन का सत्संग का बादशाह। अलग को मिला अल्लाह बेबादशाही सारी भागीदार को दे दी, दोनों एक दूसरे के भागीदार। यदि कि आज में दोनों में खटपट हो गई, जिसको अद्वैतवाणी में बाबा ने बोला हुआ है बिना ज्वाला कब प्रज्वलित हुई, यदि कि आज से ही यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ बिना ज्वाला भी प्रज्वलित हुई, कौन निमित्त बने? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे, ब्रह्मा भी निमित्त बना, प्रजापिता भी निमित्त बना, और ब्राह्मण बच्चे भी उस विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के निमित्त बने। तो जो निमित्त बने हैं उनको अब अंत में वो विनाश ज्वाला संपन्न भी कर दे, क्योंकि विनाश है कल्याणकारी। जब तक वो विनाश ज्वाला संपन्न नहीं होगी तब तक माला के मर के प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। आहुति डाली जाती है कि नहीं? तो जो आहुति डालने वाले कमजोर होते हैं, जिनको प्रैक्टिस नहीं होती, वो अपना हाथ बाहर खींच लेते हैं, उनकी आधी आहुति अंदर जाती है, आधी आहुति बाहर गिर जाती है, तन मन धन पूरा स्वाहा नहीं कर पाते। तो जो पक्के ब्राह्मण होंगे, जिनकी माला तैयार होनी है, वो अप्रत्यक्ष होंगे, जब बिना ज्वाला पूरे जोर को पकड़े, तो घबराने की बात नहीं है, वो तो और खुशी की बात है। कमजोर आत्माएं घबराएंगी और पावरफुल आत्माएं पावर पकड़ेंगी। तो यज्ञ के आज में ही यज्ञ कुंड से कोई बात को लेकर के ब्रह्मा और बाप के बीच फ्रिक्शन पड़ गया, फ्रिक्शन डालने वाले वो बच्चे ही थे, दूसरे धर्म की आत्माएं यज्ञ के अंदर प्रवेश करने लगी और वो बाप को पसंद नहीं कि इनको अंदर घुसा के बैठा है, क्योंकि लड़ाई अभी भी है। यज्ञ के अंदर कुछ ऐसी आत्माएं आ गई जिनको अंदर सत्संग में भले आने देना चाहिए, लेकिन उनको अंदर घुसा के नहीं बैठाना चाहिए। वही हुआ, माँ का जो हृदय होता है कोमल होता है। माँ अपने अंधे लूले काने कुत्ते चोर चकार डकैत लंपट बच्चे को भी अपनी गोदी से अलग नहीं कर सकती। ब्रह्मा बाबा ने उस बच्चे को अलग करने से बाहर करने से इनकार कर दिया। बाप को ये बात पसंद नहीं थी, दोनों फ्रिक्शन पड़ गया। बच्चों ने माँ का साथ दिया, माँ की तरफ से लड़े, बाप और बाप के फॉलोअर्स का जितना भी संगठन था वो सब चला गया। वही सारा संगठन राम जैसी आत्माओं का, राम बाप जैसी आत्माओं का, जिनके लिए मुरली में बोला राम फेल हो गया, ऐसे कभी नहीं बोला राम फेल हो जाएगा, भविष्य के लिए मुरली में नहीं बोला राम फेल हो गया। मन पास में कोई बच्चा था जो ब्राह्मण व्यक्ति की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते फेल हो गया, तो फेल हो गया तो अनुभवी तो बना, तो उसको रिजल्ट उनको क्या मिलता है, क्या बताया कि वो फेल में जाके क्या बनेगा, चंद्रवंशी बने। कभी कभी ऐसे भी होता है, खासकर जो वकालत पढ़ाई जाती है तो उसमें वकालत में जो आखिरी साल की पढ़ाई नहीं पढ़ पाते हैं, वो भी इनकम टैक्स ऑफिस में प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो पूरे पास नहीं हुए ऐसे हो गए ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बेकार हो गए, तो जो पहले पहले फेल हुए वो कौन से पद के लायक बन गए, सेना में चंद्रवंश के पद उन्होंने ले लिए। अब बाबा कहते हैं कि जो ब्राह्मण बच्चे एक बार ब्राह्मण बनते अगर शरीर छोड़ते हैं तो उनका किया हुआ पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जा सकता, वो फिर दोबारा जन्म लेकर के पुरुषार्थ करेंगे। तो वही आने वाली आत्माएं राम और राम बाप के फॉलोअर्स बच्चे क्षत्रिय वर्ण की विशेष आत्माएं, जिन क्षत्रिय वर्ण वाली आत्माओं ने भारत में विशेष राजाइयां की, ब्राह्मणों ने राजाइयां नहीं की, शूद्रों ने इतनी राजाई नहीं की, राजाई कौन सी जाति ने विशेष की है भारत में, क्षत्रिय वर्ण, वही क्षत्रिय वर्ण की विशेष आत्माएं जो है वो फिर दोबारा जन्म लेकर के 76 में जब आदि ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी होती है फिर प्रत्यक्ष होने लगे। आदि ब्रह्मा कौन, वही प्रजापिता। तो वही प्रजापिता की सोल ब्रह्मा जी से ही छोड़ने के बाद फिर यज्ञ में प्रवेश कर लिया। वही प्रजापिता के साथ वाली आत्मा जिसे यज्ञ माता के रूप में पहचाना जाता था, वो यज्ञ माता वो भी शरीर छोड़ जाती है, वो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद फिर यज्ञ में आ जाती। जैसे जंगल कभी खाली नहीं रहता, उसमें शेर शेर नहीं होने चाहिए राजा के रूप, तो ब्रह्मा सरस्वती जाते हैं तो उनका स्थान कोई दूसरी आत्मा दो ले लेती, जिनका मुकाबला ज्ञान योग धारणा और साइंस में कोई कर नहीं सकता। ये बात दूसरी है कि पहले पहले वो खुश रहती है और बाद में प्रत्यक्ष हो जाए। तो 66 से लेकर और 69 तक जिस समय बाबा ने प्रजापिता शब्द को ऐड करवाया, आप पुराने चित्रों में देखेंगे त्रिमूर्ति के चित्र में क्या लिखा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, इसमें प्रजापिता शब्द ऐड नहीं, क्योंकि चित्र पहले का बना हुआ है। ऐसे झाड़ के चित्र में ये भी पुराना चित्र बना हुआ है, उसमें भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय छपा हुआ है, प्रजापिता शब्द ऐड नहीं है। ये प्रजापिता शब्द ऐड ही तब हुआ है जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया और राम सीता वाली आत्माएं यज्ञ के अंदर नारायण के चित्र के नीचे और श्री के चित्र के नीचे लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय। क्यों? जब वो आत्मा हिंद नहीं तो उनकी स्मृति दिलाना भी बेकार है, और जब वो आत्मा एक में आ गई तो परमात्मा शिव गौर फादर ने उनकी स्मृति भी मुरलियों में दिलाना बच्चों को शुरू कर दिया। नाइन से लेकर के और 76 तक कितने वर्ष हुए? 7 वर्ष। 75 तक समझ लीजिए। 76 में तो 75वां वर्ष मनाया गया। भारतवर्ष में बड़े जोर शोर से देशों में भी कैरेक्टर्स निकाले गए थे कि 76 है बाप का 75वां वर्ष। तो कोई पूछे 76 में बाप का 75वां वर्ष क्यों नहीं मना, क्यों मनाया? क्या इससे पहले 40 वर्ष बाप की 75 का कार्य नहीं हुआ था? क्या 76 के बाद कभी बाप की 75 का कार्य नहीं हुआ? 76 में ही बाप की 75वां वर्ष क्यों मनाया गया? रहस्य को नहीं जान, उसका रहस्य ये है कि 76 में वो बाप के रूप में कुछ बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है, जिसके लिए इशारा व्यक्तवाणी में दिया कि विदेशी बाप को पहले पहचानेंगे, विदेशियों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी, जिसका भी गलत अर्थ लगा लिया गया। कौन समझा जो दुनिया भी विदेशी है, पैसे वाले, हवाई जहाजों में घूमने वाले, उनके द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा? ऐसी बात नहीं। बाप की प्रत्यक्षता को बाप के जो 108 बच्चे हैं, माला के मणके बनने वाले हैं, जन्म जन्म के राजा हैं, उन श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा ही प्रत्यक्षता हो सकती है। दुनिया की कोई हस्ती बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकती। वो दुनिया वाले जो साहूकार हैं, धन दौलत वाले हैं, वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप के गरीब निवास बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते। तो वास्तव में हम ब्राह्मणों की दुनिया में ही जो बीज रूप आत्मा है, जो यज्ञ के आदि में भी थी, छोड़ करके चली गई, फिर दोबारा यज्ञ में आई, वही बीज रूप आत्मा जिन्होंने ब्रह्मा साकार रूप से जन्म में पालना नहीं ली,
उनको साकार याद आएगा या निराकार बिंदु याद आएगा? कौन ज्यादा याद आएगा? निराकार बिंदु ज्यादा याद आएगा। और जिन्होंने साकार से पालना ली, साकार की गोद में खेले, उनको साकार याद आएगा या बिंदु ज्यादा याद आएगा? साकार ज्यादा याद आएगा। अंतर क्या पड़ेगा? बिंदु का संघ का रंग जो बुद्धि से जिन्होंने लगाया, उनकी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या एक स्थूल रूप को जिन्होंने याद किया उनकी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी? बिंदु की याद करने वाले जो नए बच्चे हैं, दोबारा जन्म लेकर के आए लेकिन जिन्होंने साकार पालना नहीं ली, उनको बिंदु की याद ऑटोमेटिक आएगी और उनकी बुद्धि तीव्रगामी होगी, सूक्ष्म।
और जिन्होंने साकार रूप को याद किया, साकार को याद करने से उनकी बुद्धि स्थूल हो जाएगी। स्थूल बुद्धि में ज्ञान के जो सूक्ष्म राज हैं, वो बैठ ही नहीं सकते। इसलिए ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। जो आने वाले बच्चे जो फर्स्ट में थे, वही लास्ट में फिर आते दोबारा जन्म लेकर, और लास्ट में आकर के फास्ट को साथ करके फिर फर्स्ट में आ जाते। तो फर्स्ट आने वाले बच्चे 108 मणकों की माला के मणके बनते, वो बच्चे बाप के वो बच्चे हैं जो बाप को संसार में प्रत्यक्ष करने वाले, और वो बच्चे बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज के द्वारा, मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज के द्वारा, मनसा सेवा के द्वारा सारे संसार की आत्माओं को संदेश देने की शक्ति रखने में योग्यता रखने वाले बच्चे। लेकिन जब तक उनकी बुद्धि में सारे रहस्य क्लियर नहीं होते, तब तक वो कार्य रहा हुआ। जब एक बार सारे रहस्य क्लियर हो जाए, बात क्लियर हो जाए, फिर कार्य संपन्न होने में देर नहीं लगती। तो 76 में बाप की प्रत्यक्षता होने पर वो विदेशी बीजों को बच्चे पांच पुत्र थे उसमें, जिनको सनत कुमार कहा जाता है। पांच छह वर्ष के दिखाए जाते हैं। ये अलौकिक आयु की बात है। 59-70 से लेकर के और 75 तक पांच छह वर्ष की आयु वाले वो बच्चे वो संसार में बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। उनमें एक है पहला आदि सनातन देवता धर्म का बीज, बाकी तीन है इस्लामी बौद्धी और क्रिश्चियन धर्म के बीच, जो विदेशी बच्चे हैं। वो विदेशी बच्चे पहले उस बात की गुह्यता को समझ करके और बाप को प्रत्यक्ष ब्राह्मण की दुनिया में कर देते हैं। ये बाप की प्रत्यक्षता का वर्ष हुआ 76। विदेशियों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष हुआ। ये वास्तव में रात्रि के 12 बजे का पीरियड हुआ। विदेशी लोग जो हैं वो नए दिन की शुरुआत रात्रि के 12 बजे से मानते हैं, और भारतीय लोग स्वदेशी लोग दिन की शुरुआत नई तिथि की शुरुआत जब सूर्य निकल आता है प्रत्यक्ष रूप में सब नए दिन की शुरुआत होती है। इसलिए बाबा ने बताया पहले बाप का जन्म होगा या पहले बच्चे का जन्म होगा। जयंती को गीता जयंती, फिर बाद में है कृष्ण जयंती। तो शिव जयंती के साथ ही साथ गीता जयंती भी हो जाती है। जब जैसे ही प्रवेश करते हैं वैसे ही गीता ज्ञान सुनाना शुरू करते। ब्रह्मा बाबा का जन्म हो गया, ब्रह्मा बाबा को यज्ञ की आज में ही अपनी स्मृति आ गई कि मैं कृष्ण की सोल हूँ, इस जन्म में मेरे को ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है, नई दुनिया की स्थापना मेरे द्वारा आरंभ होगी, ब्राह्मण कुल की मेरे द्वारा स्थापना होगी। बाबा को पक्का निश्चय बैठे, उनको साक्षात्कार हुए थे प्रैक्टिकल में, प्रजापिता को तो साक्षात्कार नहीं हुए थे, उनके द्वारा तो परमात्मा ने पंडित जी का पार्ट बजाया, जिनको अपना तो कुछ साक्षात्कार हुआ अनुभव था नहीं। मैंने जब यज्ञ में अपेक्षण पड़ा तो ब्रह्मा जो भावनावादी था वो स्थिरियम रहा और प्रजापिता की टोल यज्ञ से टूट गई, क्योंकि उस समय बुद्धिवादी होने के कारण पिता को बुद्धि का जो डोज है ज्ञान का पूरा वो नहीं मिल सकता। ज्ञान का पूरा डोज तो तब कहा जाए जबकि सच्ची चतुर्थी पूरी नॉलेज मिल जाए। रामा